ओम शांति सभी। हमारे सामने अभी एकदम ही बहुत ही स्पेशल वक्ता अवेलेबल है, वो भी आई थिंक शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और स्पेशली वापी मुंबई से आए हैं हमारे लिए, लावण्या बहन, जो पिछले 18 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है। वो साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है और कॉरपोरेट ट्रेनर भी है। वो प्रखर पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर है और कई कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में उनके सेमिनार होते हैं मोटिवेशनल स्पीच के लिए। तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं भी है और आज हम उनसे जानेंगे। लावण्या बहन जी,
ओम शांति। अभी सचिन भाई जी ने कुछ सिखाया आपको, है ना? क्या सिखाया? हैप्पी रहना। तो मुझे वो दिखना चाहिए ना? दिखना चाहिए, राइट। तो अब उसी हैप्पीनेस को हम 10 कदम और आगे बढ़ा दें, क्योंकि इग्निशन तो लग गया है, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं, राइट? सो अब लेकिन मैं चेक करूंगी कि सबके सब 10 फोल्ड ज्यादा खुश रहने के लिए आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट? ठीक है, ठीक है। अब जब मैं बोलूंगी वन, तो वन में आप सब क्या करेंगे? सब पहले तो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, सबके सब। वेरी गुड, राइट। जब मैं वन बोलूंगी तो आपको अपनी ही जगह पे बस 360 डिग्री घूम जाना है, राइट? जब टू बोलूंगी तो दोनों हाथ ऊपर करें, जब थ्री बोलूंगी तो एक क्लैप होगा और फोर बोलते ही साथ अपनी चेयर पे बैठ जाना है। लेकिन ये सारे काम कैसे होने चाहिए? एंड एनर्जी के साथ, राइट? क्योंकि खुशी से एनर्जी, करें, ओके? चलो, वन टू थ्री फोर, अगेन फिर से उठ जाओ। हाँ, मैं पहले तो ट्रायल राउंड होता है ना सब चीज का, राइट? ठीक है, चलो। अब मैं जो नंबर बोलूंगी सबको याद हो गया ना, राइट? जितने बार बोलूंगी उतने बार, ठीक है, करें। तो पहले, क्योंकि इतनी बड़ी चीज लेने से पहले ये देखना पड़ता है कि हम लोग फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं, करें। चलो, वन थ्री, मैंने थ्री बोला था, हाँ, टू, इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है, वन थ्री टू, एक ही बार बजाना है, वन टू थ्री टू थ्री टू थ्री फोर। आहा, मतलब सबके सब पहुंच गए, करेक्ट, राइट। तो चलो अब सबके सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है? कुछ करना है तो डट कर चल। अरे, सुबह का ब्रेकफास्ट अभी भी है। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीग पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास को पलट कर चल। लीग पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल, राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का इंतजार ना कर, जो चल पड़े थे अकेले उनके जीवन में आज है मेले, और जो करते रहे इंतजार उनके जीवन में आज भी है झमेले। सबके सब सीधा हाथ आगे करो, ऊपर लेके जाओ, पीछे लेके जाओ और अपनी पीठों को, क्योंकि हम सब चलने वाले हैं, झमेले वाले नहीं है। यस नो करे। अब ये बात दिसंबर 2011 की है, रात के 9 बजे होंगे। एक लड़की दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी कानपुर जाने के लिए, लेकिन उस रात जब बैठी तो उसके साथ साथ उसी प्लेटफॉर्म से उसी के कोच में 4-5 गुंडे भी चढ़ गए, और वो चढ़े इस पर्पस थे कि उसने मोटी सी गोल्ड की चेन पहनी थी। अब 10 बजा, बाकी सारे कोच वाले अपना अपना बिस्तर खोल के सोने की तैयारी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन उस कोच में अकेली वही एक फीमेल थी, बाकी सारे मेल थे। अब जब सब लोगों के सोने की तैयारी होने लगी, तब वो पांचों के पांचों लड़के एक्टिव हो गए, इसको अप्रोच करने लगे, इसके पास बैठे, कुछ कुछ बकवास करने लगे, उसको टीज करने लगे, इसको बहुत रेस्टलेस होने लगा। उसने लोगों को बोला भी, चिल्लाया भी, लेकिन कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, सब देखते रहे। और धीरे से उन लड़कों ने उसके पास जाके सीधा उसके चेन पे हाथ मारा, और जैसे ही उन्होंने हाथ मारा, ये लड़की जो उस समय अपनी यूनिवर्सिटी की चैंपियन थी और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन थी, उसने उन लड़कों को झटका मारा, और 5 लड़के और ये लड़की दोनों में फाइटिंग शुरू। अब ये लड़की पूरी जोर से चिल्लाए भी, हाथ पैर भी मारे उनको, पूरी जान लगा दे, और सब के सब सिर्फ देखते रहे। ये लड़की लड़ती रही, 5 लड़कों को 5 से 7 मिनट में समझ में आया ये लड़की अपने कब्जे में नहीं आने वाली है। अब धक्का मुक्की मारा मारी होते होते सब के सब कोच के गेट तक पहुंच गए। जब लड़कों को लगा कि लड़की तो अपने कब्जे में आने वाली नहीं है, एक काम करते, सीधा चेन पकड़ो और इसको पैर से बाहर धक्का मारो, अदरवाइज तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पांचों के पांचों लड़कों ने चेन पे हाथ रखा और सीधा लात मारी उसको, और ये लड़की पूरी बाहर फिकाई, लेकिन जैसे ही बाहर फिकाई, दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसने जब से उस ट्रेन से उसके सिर को मारा, और वो लड़की कहां जाके फिकाई, उसको रात को 2 बजे होश आया। जब रात को 2 बजे होश आया उसको, तो उसका पूरा शरीर खून से लदा हुआ और इतना दर्द से करा रहा था, और उसने जब अपने शरीर को पता चला मैं ट्रैक पे हूं, शरीर को फोल्ड करने की कोशिश की, मोड़ने की कोशिश की, तो उसका शरीर फोल्ड नहीं हो रहा था। रीजन के पूरे शरीर में चूहे चिपके हुए थे जो उसके मांस के लोथड़े को खींच रहे थे। अब ये लड़की पूरी रात चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, कभी होश में आती, कभी बेहोश होती, कभी होश कभी बेहोश। सुबह के 5:30 बज गए। 5:30 बजे करीब कुछ लोग उस ट्रैक से निकल रहे थे, उन्होंने देखा इस लड़की की इतनी बुरी हालत, इमीडिएटली उसको उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए पास की, उसके घर वालों को कॉल किया, घर वाले दिल्ली में, भागे भागे आए और उसको लेके गए और एम्स में एडमिट कर दिया। लेकिन तब तक रात भर में ये खबर नेशनल न्यूज बन गई थी, हर टीवी चैनल में, क्योंकि ये नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन थी। अब यूनिवर्सिटी वालों को पता चला, एक एक बंदा आए, अरे अब तू खेलेगी कैसे, अब तू कॉलेज कैसे आएगी, अब तू क्या करेगी, सब के सब उसको दया दिखा रहे। ये चुपचाप पड़ी, अंदर ही अंदर आग लग रही, मैं वो लड़की जो इन सब की मदद करती थी, इनको मोटिवेटेड करती थी, आज ये देखो मेरे पे दया, मैं इतनी दया की पात्र हूं, अंदर ही अंदर आग लगे।
उसने डॉक्टर से पूछा, अंकल बताओ मुझे करना क्या है। डॉक्टर ने बोला कि बेटा अब ये पैर तेरे काम का नहीं है, उसका जहर पूरे शरीर में फैल रहा है, हमें इसको निकालना पड़ेगा। बोले निकालो, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? बोले जब वो थोड़ा हील होगा उसके बाद हम नकली पैर लगा सकते हैं। तो बोले वो नकली पैर लगाने के बाद मैं कितने दिन में चल पाऊंगी? बोले देख बेटा, सच्चाई तो ये है, किसी को 6 महीने लगता है, किसी को साल भर लगता है उसके साथ एडजस्ट होने में। बोले लगाओ। उसका पैर काटा, नकली पैर लगाया, ये लड़की 1 महीने के अंदर चलने लगी। चलने के साथ अब उसको लगा ये मैं जिंदगी भर लंगड़ा लंगड़ा की चलूंगी। उसने बोला अब मैं चलूंगी भी नहीं और अब मैं दौड़ूंगी भी नहीं, अब मैं सीधा चढ़ूंगी और वहां चढ़ूंगी जहां दुनिया के टॉप के लोग ही चढ़ पाते हैं, वो है माउंट एवरेस्ट। अब उसके दिमाग में हाथ हो गया संकल्प कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन चढ़ूं कैसे? तब उसको दिमाग में आया कि बचेंद्री पाल ही वही है जो मुझे सिखा सकती है। सीधा वो बचेंद्री पाल के पास गई और उसको बोली कि आप मुझे माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचाओगे, आप मुझे चढ़ना सिखाओगे। बचेंद्री पाल इज शॉक्ड। 5 मिनट तो सिर्फ ऊपर से नीचे वो देखती रही। 5 मिनट के बाद बोला, बेटा तुम तो ऑलरेडी चढ़ चुकी हो, अभी तो सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी है। उसने प्रैक्टिस शुरू कराई और एग्जैक्टली दिसंबर 2013 में अब वो माउंट एवरेस्ट में इंडिया का झंडा गाड़ दिया और उस दिन ये न्यूज ग्लोबल न्यूज बन गई, पूरी दुनिया की पहली एम्प्यूटेड गर्ल। अब मुझे बताओ ताकत है कहां, शक्ति है कहां, पावर है कहां? बोलो कहां? हमारे बाप की प्रॉपर्टी में, हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी में, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, किस में ताकत किस में? आत्मबल। ये आत्मबल वो है जिसकी जड़ है सोच, जिसने जो सोचा और सोच ही लिया बाकी बल अपने आप आ जाएगा। एक पैर है वो 100 पैर का काम करेगा, 2 हाथ है 1000 का काम करेगा, यदि 100 रुपए है वो 1,00,000 का काम करेगा, ये 2 आंखें हैं ये 1,000 आंखों का काम करेगी। अब मुझे बताओ हम यहां आए क्यों हैं? यहां से पहले हम पैसे के लिए रोते हैं, यहां से पहले हम बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हमारे रिश्ते सही नहीं चलते, घर में फाइनेंस बराबर नहीं है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आज ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी ये, हम सिर्फ रो रहे हैं। इसलिए जो एक बार इस धरती पे कदम रखता है उसके लिए एक गारंटी पक्की है कि वो जीवन में कभी भी रोएगा नहीं। अब क्यों नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उसको पता है कि जो वो एक बार सोचता है और रोज रोज उस सोच को हर सुबह पानी देता है और हर सुबह उसको प्रकाश देता है, वो इतना बड़ा पेड़ बनता है कि बाकी डाउट के, गरीबी के, घबराहट के, खराब रिश्तों के सारे झाड़ उसकी परछाई में दब जाते हैं। इतना पावर है इस जमीन में। अब मुझे बताइए आप में से कितने हैं जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं? सिर्फ वही हाथ उठाना, सभी का नहीं, अपना बताओ जो सोचते हैं अपने बारे में अच्छा। ठीक है, हाथ ऊपर ही रखना, हाथ अभी ऊपर, क्योंकि मैं बिना चेकिंग के आगे नहीं बढ़ पाती हूँ. करें. यस सिस्टर, आप बताइए आप कैसी हैं. हाउ आर यू. राइट. हाउ आर यू. हाउ आर यू. राइट. हाउ आर यू. हाउ आर यू. यहां से कोई बताए. हाँ आपने हाथ उठाया. हाउ आर यू. करेक्ट. हाउ आर यू. हाँ हाउ आर यू. नहीं वो नहीं चाहिए. नहीं मालूम अभी आप कैसे हैं. हाँ हाउ आर यू. अच्छा बैठो. हाउ आर यू. हाउ आर यू. अपने बारे में बोलो. अच्छा ओके. अब बताओ स्कूल में टीचर ने कितनी पटाई की थी सिर्फ वोकैबुलरी सिखाने के लिए. ये सुनो फाइन क्या होता है. सबसे घटिया शब्द फाइन. मतलब अब 80 के हो गए बच्चे अभी वृद्धाश्रम में आपको छोड़ने वाले हैं और रास्ते में कोई पूछ लिया कैसा है. ठीक है फाइन है. फाइन से ऊपर क्या होता है बोलो. बहुत अच्छे से ऊपर क्या होता है. करेक्ट. यदि आपको मौका मिल रहा है अपने बारे में किसी को एक सेकंड बताने के लिए तो आप बोलोगे फाइन हूं ठीक हूं अच्छा हूं. अरे टीचर ने और क्या सिखाया था आपको. बढ़िया सिखाया था कि नहीं. एक्सीलेंट सिखाया था कि नहीं. ऑसम सिखाया था कि नहीं. आउटस्टैंडिंग सिखाया था कि नहीं. टॉप ऑफ द वर्ल्ड सिखाया था कि नहीं. यस सुनो. करेक्ट. अब यदि दुनिया में कोई भी आपको रास्ते चलते पूछे आप कैसे हैं तो क्या बोलोगे. अरे कम से कम बढ़िया तो बोलोगे. यस और नो. बोलोगे बढ़िया. कैसे हैं आप सब. कैसे हैं आप सब. कैसे हैं आप सब. अच्छा बढ़िया बोलने से बढ़िया हो गए. घर में तो मारामारी चल रही है. ईएमआई जा नहीं रहा बराबर टाइम से. हाँ गाड़ी खरीदने का सोच रहे आ नहीं रही गाड़ी. कैसे बढ़िया. बढ़िया बोलने से हो गया क्या बताओ तो. बढ़िया सोचने से क्या हो क्या जाता है. हाँ क्या होगा. बीवी तो बदली नहीं. आपके बढ़िया बोलने से बच्चे पढ़ने वाले नहीं है. करे तो फिर बढ़िया बोलने से होगा क्या. बस एक्टिंग करने का है. हाँ हाँ क्या क्या हो जाएगी. मेहनत बढ़ जाएगी तो अपन मजदूर बन जाएंगे. क्या हो जाएगा. हेल्थ कैसे. हेल्थ कैसे. मैं बढ़िया बोलूं हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी. मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी. हाँ क्या हो जाएगी. बढ़िया बोलने से हो जाता है. कौन सी बीमारी. हाँ तो दिमाग क्या करेगा फिर. तो मैं इसको बोलूं ये इसको बोलेगा. करेक्ट. एक बार जोर दो ताली तो बजाओ. एकदम परफेक्ट. अरे घर में कितना भी गड़बड़ चल रहा हो. बिजनेस कितना भी थर्ड क्लास हो. चार दुकान में से तीन दुकान बंद हो गई हो. बच्चा रोज शराब पी के घर आता हो. कोई ड्रग लेता हो. किसी का ब्रेकअप हो गया हो. किसी की दुकान बंद हो चुकी. कुछ भी हो जाए यहां से क्या बोलना है. क्या हो जाएगा बढ़िया बोलने से. जिसने हर चीज को बढ़िया 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 और बढ़िया बोला. सबसे पहले याद रखो जो मैं सोचती हूं या बोलती हूं पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है. हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है. जैसे ही उसमें लगातार ये मैसेज मिलेगी कि इंसान बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया. सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी जो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करेंगी. आपकी सोच को बढ़िया करेंगी. आपके ब्रेन के सामने के हिस्से जिसको बोलते हैं आइडियाज का फैक्ट्री है. ये आइडियाज देना शुरू करेगी कि सारी घटिया चीजों को बढ़िया कैसे बनाओ. कैसे बनाओ. सो अब मुझे बताओ कि बढ़िया 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 सोचने से बढ़िया होगा या नहीं होगा. होगा या नहीं होगा. होगा या नहीं होगा. चलो पूछ लूं मैं चेक करूंगी. चलो हाँ बताइए सर. हाँ पत्नी कैसी है आपकी. हाँ अब बच्चा कैसा है आपका. अच्छा कैसा.
बोलो बोलो, बढ़िया से नीचे उतरना कहीं। कैसा बच्चा? हाँ हाँ बताइए, स्वास्थ्य कैसा है आपका? कैसा है स्वास्थ्य आपका? टॉप का, बढ़िया, बराबर। हाँ गाड़ी कैसी है आपकी? बिजनेस कैसे चल रहा है? पड़ोसी कैसे है? दुश्मन कैसे है? दोस्त कैसे है? ईएमआई कैसे चल रहा है? किराया आ रहा कि नहीं आ रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। करें? शक्ल कैसी है? अकल कैसी है? हाइट कैसी है? पर्सनालिटी कैसी है? लाइफ कैसी है? पास्ट कैसा था? प्रेजेंट कैसा है? फ्यूचर कैसा होगा? अरे एक बार जोरदार ताली तो बजा दो। अब इतने बार बढ़िया बोला तो किसने सुना? सबसे पहले किसने सुना? 37 ट्रिलियन सेल्स, किसने सुना? पूरी दुनिया की, सिर्फ ट्रंप की नहीं, पूरी दुनिया की पूरी मिसाइल्स मिला लो, तभी भी 37 ट्रिलियन मिसाइल्स नहीं है इस दुनिया में। ऊपर वाले ने इतनी मिसाइल्स यहां पे दे के रखा है कि एक साथ इसको जागृत कर दोगे तो ये टावर बन जाएगा पावर का, पावर का टावर। लेकिन कैसे बनेगा? सोच 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 और सोच। ये पूरे पेड़ की जड़ है, यदि जड़ सॉलिड है तो तना सॉलिड, और तना सॉलिड है तो बाहर जो दिख रहा है सब कुछ सॉलिड ही होगा। यस और नो? यस और नो? पक्का? अब मैं सिर्फ ये पूछूंगी, अभी तो मैंने शब्द बताया था, बढ़िया याद हो गया? सब ऐसे करो और पॉकेट में रख लो। ये क्या रखा हमने? बढ़िया करे, ठीक है। चलो अब दूसरा, ये तो शब्द हुआ, लेकिन हम शब्दों में बात थोड़ी करते हैं, हम तो वाक्यों में बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं किसी से भी पूछूंगी, अपने बारे में एक बढ़िया वाक्य बोलना है, एकदम टॉप क्वालिटी का, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए और वो निगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे? एक ही वाक्य अपने बारे में बढ़िया, ठीक है। चलिए हाँ भाई आप बताइए, एक ही वाक्य अपने बारे में बढ़िया बताएंगे। हाँ बैठे बैठे बताइए, जोर से बोलिए। वेरी गुड, हाँ बताइए। हाँ बस बैठे बैठे बोलिए जोर से। वेरी गुड, हाँ आम। वेरी गुड, हाँ 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 बोलो, क्या है? हाँ हम एकदम बढ़िया है, और अपनी एक विशेषता बताओ ना। हाँ कान्हा जी आपसे करते हैं कि नहीं? हाँ राइट राइट, हाँ हाँ यहाँ बताइए। हाँ बोलिए कोई भी। मैं बहुत, वेरी गुड, और यहाँ से बताइए। हाँ हाँ एक बढ़िया, हाँ बोलो बोलते जाओ। मैं, वेरी गुड, और बोलो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं पद्मा पदम। हाँ राइट, पीछे वाले बताएं। मैं जो करता हूं बढ़िया, यहां से बताएं। वेरी गुड, और बताइए। परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा चलो अब बहुत सीरियसली हम अब चीजों के सॉल्यूशन पे जाएं। हाँ क्या बात है, क्या बात, आपके पति पति भी आए यहाँ? छोड़ के आए? ओके ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, आप में से कितने हैं जिनको सच में अभी लगता है कि धन की थोड़ी कमी है? जस्ट ईमानदारी से हाथ उठाओ। राइट, कितनों को अभी लगता है कि मेरे बच्चे शायद सही नहीं करते? राइट, कितनों को लगता है हमारे रिश्ते जितने सुंदर होने चाहिए वो नहीं है? राइट, कितनों को ऐसा लगता है कि जितना मेरे को संपूर्ण स्वास्थ्य फील होना चाहिए वो नहीं है? करें, ठीक है। अब ये याद रखो, और ये बहुत जरूरी है, क्या हो रहा है उसके बारे में चिंतन हर एक ऑर्डिनरी आदमी करता है।
हर दूसरा बंदा यही करता है, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा। आजकल घर में ऐसा चल रहा है, पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केट बड़ा टाइट चल रहा है, अभी युद्ध हो रहा है, पता नहीं अगला क्या होने वाला है, पेट्रोल का क्या होगा, खूब सारा भरा लें क्या, पता नहीं बीमारी होगी तो उस समय क्या होगा, ये हर दूसरा सोच रहा है। लेकिन इस धारा पे कदम रखने वाला वो नहीं सोचता जो हो रहा है, वो सोचता है वो जो बनाना चाहता है, राइट? तो अब मुझे बताओ, वो क्या हो रहा है उसको देखना बंद करो, क्या चाहिए उसको देखना, सुनना, सोचना, पढ़ना और बोलना शुरू करो। ये पावर है क्रिएटिविटी का। किसका पावर है? करें तो हमारे पास दो चीजें, दो कान के बीच में जो जगह है, या तो हम उसमें कंज्यूम करें दूसरे क्या बोलते हैं, या टीवी में क्या दिखता है, या सोशल मीडिया में क्या दिखता है, या मैं अपना क्रिएट करूं। दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? करेक्ट, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या देखा गया, ऐसे गार्डन में आप वॉक करने जाओ, ऐसे दो चार लोग बैठे हैं, सीनियर सिटीजन, और अपने बच्चों की बुराई, बहू की बुराई, इसकी चल रही है। आप 15 दिन के बाद जाओगे तो देखिएगा वहां 4 नहीं है, कितने होंगे? 40 बैठे, और सबके सब एक ही बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ गार्डन में 2-3 मस्त आराम है, हंसने बोलने वाले, ठीक है। आप 15 दिन के बाद जाओगे, वहां भी 40 है, लेकिन सारे के सारे मस्ती वाले। तो ऐसा हो कैसे रहा है? हाँ, नंबर 1, जो हम सोचते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक एक कोशिका में जाती है, और वो एक एक कोशिका थ्राइव करती है और हम पावर हाउस बन जाते हैं। अब 2 तरीके से होते हैं। यदि मैं निगेटिव सोचना शुरू करूंगी, सबसे पहले मेरे शरीर के अलग अलग हिस्से में बीमारियों के रूप में आएगा, और वही वाइब्रेशंस वातावरण में फैलेगा और उसी फ्रीक्वेंसी के दूसरे बंदे को खींच के ले आएगा। जैसे 2 कान के बीच में FM है, 93.5 FM, यह सुनो, 93.5 FM में कौन से गाने बजते हैं? कभी खुशी कभी गम, करें। लेकिन 130.5 FM में कौन से गाने बजते हैं? ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज प्रोडक्टिव, वहां के यही गाने हैं। यहां सिर्फ ट्यूनिंग करना है, सिर्फ ट्यूनिंग करना है। यदि आपने 93.5 के गाने यहां सुबह सुबह शुरू कर दिए, अरे आज तो कमर में बड़ा दुख रहा है, पता नहीं बच्चा आज स्कूल जाएगा कि फिर आज ड्रामा करेगा, कौन से गाने लगाए आपने? कौन से लगाए? 93.5 FM। अब ये गाने होंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं कि बच्चा ड्रामा करेगा? कमर का दर्द 12 बजे तक कम होगा या ज्यादा होगा? पक्का ज्यादा होगा। तो अब क्या करें, कमर के दर्द का इलाज करें या ट्यूनिंग चेंज करें? क्या करें? इजी क्या है? ट्यूनिंग चेंज करेंगे। चलो तो 130.5 में क्या गाने कौन से बजते हैं बताओ? मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, मेरी क्या हाइट है, मेरी क्या पर्सनालिटी है, मेरी फैमिली कितनी बढ़िया है, सब मेरा कहना मानते हैं, मेरी दीवारें मुझे प्यार करती, मेरे छत मुझे प्यार करता है, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा मुझे प्यार करता है, सब लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं, सब मेरे सहयोगी हैं, सब इतने समझदार हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, सब लगे हुए हैं कि मैं खुश रहूं, सब लगे हुए हैं कि मैं एकदम स्वस्थ रहूं। आप ये बताओ, जैसे ही ये 130.5 के गाने चालू किया तो तरंगे कौन सी जाएंगी? तो दूसरे कमरे से बीवी भी वही गाना गाते हुए आएगी, तीसरे कमरे से बच्चा भी वही गाना गाते आएगा, राइट? तो पता चला थोड़ी देर में कि सारे के सारे वही गाने गा रहे हैं। यस सुनो, ये सिर्फ FM है, इस FM में यही गाने बजते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्यून कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि वो गाने हमें पसंद है, तो चैनल तो हम लगाएंगे, और हम लगाएंगे और उसको जोर जोर से चलाएंगे, लाउडली लगाएंगे, तो क्या होगा, बाकी लोग को सुनना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि नहीं? और थोड़ी देर में वो भी बाथरूम में वही गुनगुना रहेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? है ना, राइट? जैसे मेरे पति है, वो साइकेट्रिस्ट है, वो बिल्कुल नहीं मानते, वो एथीस्ट है, नास्तिक। तो मेरे यहाँ तो सुबह से मैं अपना गाने लगा देती हूँ, घर में तो बीवी की चलती है सुनो, इन लोगों की तो चलती ही नहीं है, जो गाने बजाओगे इनको सुनना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने सुना बाथरूम में वही गाने गा रहे हैं। मैं तो किसी को मानता नहीं, मैंने बोला एक कौन से गाने, अरे नहीं नहीं मैं नहीं गा रहा। मैं बोली नहीं नहीं अच्छा लग रहे हैं, अच्छे लग रहे, गाते रहो गाते रहो। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मेरे चैनल में कौन से गाने ट्यून करके रखे हैं मैंने, और जो ट्यून करा इसका मतलब है कि धीरे 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 वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही चारों तरफ गाने लाएगी, और जो इस फ्रीक्वेंसी को बिलोंग नहीं करता वो ऑटोमेटिकली दूसरा रास्ता ले लेगा। तो अब मैं बोलने जाऊं कि लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, लोग मेरे साथ बात नहीं करते, लोग ऐसे बोलूं, या मैं सिर्फ अपने गाने लाउडली चालू कर दूं, क्या करूं बोलो? पॉसिबल है सबके लिए? सबके लिए पॉसिबल है? आपको एक केस बताती हूं। कोविड का टाइम था, ऑनलाइन सेशन चलते थे उस समय, तो क्या हुआ कि एक पेशेंट था, उसका नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी डिसाइड हुआ था, अचानक कोविड मार्च में आ गया, तो उनकी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन की हॉस्पिटल पूरे कोविड पेशेंट से भर गई। अब ये बोल रहे मैं चल नहीं पाता, मैं उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, मेरे को तो ऑपरेशन कराने है। वो बोले भाई रुक जा, ये सीन जाने दे, अभी पॉसिबल नहीं है, सारे पेशेंट कोविड के यहां पे। अब उनका ऑनलाइन सेशन चला, अब रोज रोज मेरे को इतना दुखता, मेरे को इतना दुखता, मेरे को इतना, डॉक्टर समझ ही नहीं रहा है, मैं चल नहीं पाता, मैं बैठ नहीं पाता। मैं चार दिन सुनी, पांच दिन सुनी, छठवे दिन मैं बोली चुप, कितनी उम्र है? 47। 47 ईयर्स तक इस घुटने ने सुबह दोपहर शाम रात इतना साथ दिया, एक बार वो रोया नहीं, एक बार उसने तुझे चिल्लाया नहीं, अब जरा सा तकलीफ हुआ और गाली देना शुरू। मैंने बोला अभी तो ऑपरेशन हो नहीं सकता, आप मेरी बात मान सकते हो तो मानो। बोले बोलो। मैंने बोला आज से सुबह 15 मिनट लगातार उसी घुटने पे हाथ रखो और चार वाक्य बोलो, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। और रात को सोने से पहले, अब ये बंदे के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बेचारा हाथ रखे बस एक ही गाना गाए, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव। कोविड का सीन निकल गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर फिर से बोला एक्सरे करा के लाओ, अभी करंट स्टेटस क्या है देखते हैं। उसका कार्टिलेज वापस आ गया। बोले अभी तो ऑपरेशन का कोई जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही मैनेज कर लोगे। दैट इज द पावर, दैट इज द पावर। अभी कल आने से पहले 28 साल का लड़का है, ही इज ए प्रोफेशनल आईसीआईसी बैंक में, सेकेंड ब्रेकअप, हाँ सेकेंड ब्रेकअप। अभी तो तीन और चार तो कॉमन है शादी के पहले के। हमारे क्लिनिक में हर दिन कम से कम 5 ब्रेकअप आते। हाँ तो अब ब्रेकअप कैसे होता है? एकदम दुखी। अच्छा दुख इसका नहीं होता कि लड़की गई, लड़की दूसरे के साथ है, दैट इज द इशू। कि जो मजा मुझे आना चाहिए वो भी किसी और को आ रहा है। सो अब कैसे होता है, वो इंस्टा में स्टॉकिंग कर रहे हैं तो इतना दुखी, खाना पीना बंद, आंखों से आंसू, और मुझे बता रहा मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, तो केस हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा अच्छा व्हाट आर यू मिसिंग? तो अल्टीमेटली निकलने आता ही इज मिसिंग द फीलिंग जो उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। सो आई एम नॉट मिसिंग द गर्ल, आई एम मिसिंग दैट फीलिंग। तो वो इंटेंस अर्ज हो रही है कि मुझे वो मिलना ही चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे मिलना ही चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब मैंने पूछा कि ये तो सेकेंड ब्रेकअप है, पहला ब्रेकअप कैसे हुआ था? बोले ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था। अच्छा तो पहले ब्रेकअप के समय क्या सोचता था? बोले अचानक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये मेरे को छोड़ सकती है, ये चीट कर सकती है मुझे, क्योंकि कभी कभी वो उसके क्लासमेट्स के साथ घूम रही है, हैंग आउट करती है, रात को 2 बजे भी मुझे कॉल करो तो बोले मैं अभी दोस्तों के साथ मैं हैंग आउट कर रही हूं। तो मेरे मन में ऐसा लगता था ये नहीं चलेगा। फिर मैं बोली कितना टाइम लगा ये सोच के बाद पूरा फाइनल होने में, ग्रैंड फिनाले? 3 महीना, राइट। अच्छा, मैं बोली इसके साथ क्या हुआ? ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। अच्छा, मैं बोली इसमें कितना टाइम लगा फिनाले में? बोले 1 ही महीना हुआ। बोली इतना फास्ट जा रहा है? अब बताओ, अभी नाउ ही इज लुकिंग फॉर द थर्ड गर्ल, ठीक है, कहां पे? टिंडर पे, ठीक है, वो तो फ्री में है, वहां तो सब मिलते हैं, सारी दुखी आत्माएं वहीं बैठी हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप बताइए, चांसेस बताइए, ठीक है, कि अब ये जो तीसरा वाला रिलेशनशिप है इसका चांसेस कितना है? बोले अब तो मैं इससे शादी ही करूंगा, मुझे करना ही नहीं है। तो अब ये कितने दिन चलेगा बाय द वे आपके हिसाब से? चलेगा कितने दिन? डाउट आने के बाद कितना स्पीड में जाएगा वो? डाउट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? वो बोलता नहीं अब तो मेरे को सीधा शादी करना है, फिर भी डाउट आएगा? ये वाले भाई ज्यादा बताएंगे, आएगा? करे तो अब बताओ डाउट का परिणाम क्या होने वाला है? फिनाले होने वाला है, करे? अब बताओ कारण क्या है? संशय, डाउट, फियर, एंगर, ये सारे जहर हैं। और जो भी जहर है वो आत्मा का बल हो ही नहीं सकता। और इवन आई एम टेलिंग यू, हमारे पास हर दिन 3 डिवोर्स केसेस कम से कम आते हैं, जो अभी अभी डिवोर्स होने ही वाले हैं। सिर्फ एक ही विधि, सच में आपने पकड़ भी लिया कि वो गलत कर रहा है, आपके पास पूरे डेटा भी है, आपके पास पूरे एविडेंस है, उसके बाद भी यदि आप चाहते हो कि मेरी शादी बचे, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 वाक्य बोलना है ईश्वर की याद में, आई एम सो सॉरी फॉर क्रिएटिंग सो मैनी निगेटिव थॉट्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच, लगातार 15 मिनट गारंटी लेके जाओ। सामने गलती का कारखाना होगा, वो आत्मा गलत कर नहीं सकती है। दारू की, शराब की बॉटल होंगी, वो हाथ नहीं लगाएगी, सब पिएंगे लेकिन वो सामने बैठेगा। यहां पे वीड होगा, यहां ड्रग होगा, सारे के सारे पिएंगे लेकिन वो थोड़ी देर में आपका बच्चा उठ के घर वापस आ जाएगा, उसका दिल नहीं करेगा, इतना पावरफुल है ये। 4:30 को हम शार्प यहां फिर से मिलने वाले हैं, जहां पर हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि मैं जो बोल रही हूं ये एक केस नहीं बता रही, मुझे पता है ये हर घर घर की कहानी है। और जो इस जमीन पे आया उसको 100% हर चीज का सलूशन होता है, इसलिए वो कभी रो नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास समाधान है, और वो समाधान साइलेंस में है। किसी को बोलने नहीं जाना पड़ता, तुम दारू नहीं पीना, तुम ये नहीं करना, तुम नॉनवेज नहीं खाना, तुम गलत काम नहीं करो, तुम कुछ नहीं बोलना है। ये इतना पावरफुल है कि जब ये लगातार संकल्पों के मिसाइल छोड़ता है ना, सामने वाला सिर्फ घायल ही होगा, और वो उसी रास्ते पे चलेगा जिसमें आप शुभ संकल्पों के साथ, शुभ भावनाओं के साथ जो सोचेंगे। कितने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बीमार हो नहीं सकते, और हो भी गए बाई चांस आप 100% ठीक हो सकते, सिर्फ इस आत्मबल से क्या सोचना, कैसे सोचना, कब सोचना, कितनी मात्रा में सोचना और कितना शक्तिशाली सोचना, हम अगले सेशन में वो करेंगे, राइट? इसलिए आप सब वहां पे रहना, लेकिन पहले इस पावर को सिर्फ समझो। लास्ट में आपको एक केस बताते हूं। एक लेडी इतनी मोटी फाइल के साथ MRI, CT स्कैन, माइग्रेन की दवाइयां चल रही हैं, थायराइड की दवाई चल रही है, BP, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है 140 से नीचे, पिछले 5 साल में उसका BP आया ही नहीं, कितनी भी दवाई खाती 140 चढ़ा ही रहता है, राइट? कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई और माइग्रेन चलता ही रहता है। पूरी फाइल के साथ आए, 50 डॉक्टर, इंडिया का कोई टॉप का डॉक्टर छोड़ा नहीं, अल्टीमेटली आए और बोले कि मेरा BP, मैं ना सो पाती हूं, ना काम कर पाती, ना खड़े रह पाती, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ केस हिस्ट्री लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई स्ट्रेस तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं। मेरे पति की 4 फैक्ट्री है, फॉरेन में बहुत बड़ा बिजनेस है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटी दुबई में, 1 बेटी जब 5 साल की थी तब उसकी डेथ हो गई, आगे आगे ब्ला ब्ला ब्ला। जब मैं 5 मिनट आगे और बढ़ी, उन्होंने मुझे रोक दिया, बोला मैं आपको कुछ बताना चाहते हूं। मैंने बोला बताइए। मेरी छोटी बेटी के बारे में बताना चाहते हो? मैंने बोला बोलो। वो जब से पैदा हुई थी ना, वो बहुत हाइपर एक्टिव थी, वो कहीं एक जगह बैठती नहीं थी, पूरे समय धमा चौकड़ी करती थी, और कोई मेहमान आ गए उस समय तो वो 10 गुना ज्यादा करती थी। उसको सिर्फ मम्मा चाहिए और मैं जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी बहू, 20 लोग का घर और मेहमान आ गए 15-20, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता था। और इसमें जब वो इतनी मस्ती करती थी, मुझे उसको मारना पड़ता था, थप्पड़ मारती थी, कमरे में बाथरूम में बंद करती थी, तब मैं सबका ध्यान रखती थी, और उसके बाद में जब सबका निपट जाता था तब मैं मेरी बेटी को खोलती थी। एक बार मेरी बिच्ची बीमार हुई, फीवर हुआ, मैं डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने बोला आप परेशान मत हो, वायरल है, 3 दिन एडमिट कर लो, ठीक हो जाएगा। हमने एडमिट कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3rd दिन मेरी बच्ची ने शरीर को छोड़ दिया। न डॉक्टर को समझ में आया, ना मुझे समझ में आया, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि क्या हुआ, पता ही नहीं चला। और वो दिन था और आज का दिन, 17 साल हो चुके, आज भी उसके वो स्कूल की यूनिफॉर्म वहीं टंगी है, स्कूल का बैग वैसा ही है, उसके छोटे छोटे जूते वैसे ही है, जिस चादर में वो आखिरी बार सोई थी वो चादर वैसा ही है। मैं रोज रात को उस कमरे में जाती हूँ, घंटों रोती हूँ, और जब थक जाती हूँ उस कमरे को ताला लगा के वापस अपने बिस्तर पे आती हूँ। उसके बाद जो हुआ वो हम अगले सेशन में जाने। ॐ शान्तिः।